हरे कृष्णा। अभी हम बहुत ही पवित्र स्थान पर आए हैं। स्थान का नाम है उद्धव कुंड। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य धनांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों के साथ में भी गिरिराज परिक्रमा दिया है और हमारे संप्रदाय के और अलग अलग संप्रदायों के हर एक आचार्य ने गिरिराज का परिक्रमा दिया है। नरोत्तम दास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु ने स्वयं बलराम जी के अवतार, उन्होंने स्वयं राघव पंडित जी को गिरिराज का परिक्रमा दिया है। जीव गोस्वामी ने अपने शिष्यों के साथ में गोवर्धन परिक्रमा किया है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के साथ में किया है। तो सभी संप्रदायों में सृष्टि के निर्माण से गिरिराज की परिक्रमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम लोग आज गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे हैं और उद्धव कुंड जैसे पवित्र उत्कट स्थान पे बैठे हैं। लंबी लीला यहाँ की, लेकिन संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा नीचे बैठिए आप, कम डाउन प्लीज, कम डाउन। तो उद्धव कुंड ये बहुत ही पवित्र स्थान है। आप सब जानते हैं कि यहां से मथुरा जाने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को द्वारका गए उसके बाद में, और द्वारका से उन्होंने अपने सेनापति चचेरे भाई परम मित्र परम सखा उद्धव जी को संदेश लेके भेजा गोपियों को। उद्धव बड़े ज्ञानी थे और उद्धव जी की जो स्थिति थी वो किसी भी भक्त के लिए वांछनीय है। वो भगवान के इतने निकट थे, भगवान के साथ में उठना बैठना, खेलना, हंसी मजाक, भोजन करना, शिकार खेलना, राजपाट चलाना, क्योंकि वो सेनापति थे उद्धव जी। भगवान कृष्ण द्वारका के जो राज्य था वहां के वो सेनापति थे। तो कोई भक्त जो है और भगवान के और निकट क्या जाएगा जितने उद्धव जी थे। तो उद्धव जी के लिए लगता था कि आगे कोई ऐसा कोई प्राप्ति नहीं है जो इसके आगे प्राप्त कर सकते। तो भगवान ने उनको समझा कि अभी ये उचित समय है, उनको अगली पाठशाला में प्रवेश दिया जाए, इसलिए उन्होंने उनको संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा। तो क्या सोच के आए थे वो कि हम गोपियों को योग सिखाएंगे। जब बहुत दुख होता है, मन बहुत विलाप करता है, तो मन को योग के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तब मन का विलाप कम हो सकता है। और उनको हम ज्ञान की बातें बताएंगे, कैसे हम आत्मा है, कैसे हम शरीर नहीं है, और कैसे दुनिया में सब कुछ दुख सुख दुख जो है सब टेम्पररी है, नश्वर है, अशाश्वत है, ये सब हम उनको सिखाएंगे और भगवान के तड़पने वाले इन गोपियों को शांत कर देंगे। सोच के आए थे वो। जैसे उन्होंने गोपियों को प्रेम को देखा तो हैरान हो गए, वो दंग रह गए। वो उनको योग सिखाने आए थे। योग का उद्देश्य क्या होता है? योग के माध्यम से हम हृदय में एकाग्रता से निरंतर भगवान का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। जो मन यहां वहां भागता है ना, अनेक विषयों में भागता है, तो विषयों से निकाल कर उसको के केंद्र स्थान में, भगवान के केंद्र में विचार में रखने के लिए हम योग में प्रयास करते हैं। दैट मीन्स कृष्णा का विचार जो है वो बाहर है, वो मन में लाने का प्रयास करते हैं। सो वी वॉन्ट टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटसाइड टू विद इन, प्रयास करते हैं। इन गोपियां क्या कर रही हैं? जमुना किनारे बैठ के ध्यान कर रही हैं कि कृष्ण को भूल सके। ऐसे बस गए हैं, छोड़ के गए हैं, तड़पा रहे हैं, हम उनको भूलना चाहते, उनको भूलने के लिए ध्यान करने बैठी हैं। और वो उनको याद कराने के लिए, मतलब एकाग्र कराने के लिए आए हैं वहां से। बोले, ये कैसा योग है? ये तो विचित्र योग है, हमने कुछ और सीखा था। तो गोपियों का प्रेम, बड़ी लंबी कहानी है वो, नंदगांव में बड़ा उत्कट प्रसंग है उसका। सात सात दिन तक, रातों रात आठ आठ घंटे का नाटक होता है, सात दिन तक चलता है वो, 56 से 64 घंटे चलता है। बड़ा करुण विषय है ये, उद्धव जी का यहाँ की भेंट जो है, ब्रज में जो आए उद्धव जी, आखिर में नंद बाबा को मिले, यशोदा को मिले, उनका रोना देखा, उनका प्रेम देखा, हैरान हो गए। फिर आखिर में गोपियों को मिले, उद्धव क्यारी नाम की जगह है नंदगांव में, वहां उनको गोपियों ने एकांत में ले गए और हृदय की बातें बताने लगे, भगवान को बुरा भला कहने लगे, भगवान को गाली देने लगे। तो उद्धव जी और भी हैरान हो गए, ये भी कैसा प्रेम है। तो उनको अनुभूति वहां पर हुई कि ये प्रेम मुझ में नहीं है, मैं भगवान के इतना निकट हूं लेकिन मुझसे भी करोड़ों गुना अधिक निकट ये है भगवान से। मैं केवल शरीर से निकट हूं, ये भाव से और आत्मा से भगवान से निकट है। तो उनको लगा कि मेरा जो स्थान अभी का है, जो स्थिति है, वो इनके सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ स्थिति है उनकी, उनकी हमारी स्थिति जो है वो तुच्छ है। इसलिए वो उन्होंने गोपियों को संदेश दिया और भगवान को बताने के लिए लौट गए द्वारका, भगवान को सब वृत्तांत सुनाया, तब उनका पूरा भाव जो है वो बदल गया था कंप्लीट। और जिनको भगवान का सानिध्य प्राप्त है, जो गोपियां उनके सानिध्य के लिए तड़प रही थी, इनको तो प्राप्त था, लेकिन उन्होंने भगवान को क्या कहा कि हम दोबारा ब्रज में जाएंगे। भगवान का सानिध्य, भगवान का जो निकट सानिध्य है, उसको छोड़ के वो बोले हम ब्रज में जाएंगे और गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन हम सेनापति है, राजा है, हम राजकुमार हैं, इस तरह से हमारी स्थिति ऐसी है कि हम गोपियों का चरण का रज नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि वो बोलेंगे इतने बड़े महात्मा को कौन चरण रज देगा, तो भगवान के साथ रहते, तो मेरा पद जो है वो मेरे लिए बाधा है। और गोपियों के चरणों की रज सहज किसको मिलती है, तृण के पत्ते को, घास के पत्ते को। तो जब वो चलती है तो सोचती नहीं कि मैं घास के पत्ते पे चल रही हूं, तो घास के पत्तों को बड़ी आसानी से कृष्ण भगवान की, गोपियों की चरणों की रज प्राप्त होती है। तो मैं भी ब्रज में जाऊंगा और तपस्या करूंगा तृण का पत्ता बनने के लिए। आमतौर पर सब तपस्या कौन करते ना, भक्त भी करते हैं, देवता भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, कुछ और ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए। भले महाराज ने यज्ञ किया था क्या करने के लिए, इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए। हिरण्यकश्यप ने यज्ञ तपस्या की थी किसके लिए, ऐसा स्थान मिलना चाहिए कोई किसी से मार नहीं सकता है मुझे, मतलब अपने स्थिति से ऊंचे स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम तपस्या या यज्ञ वगैरह करते रहते हैं। उद्धव जी क्या है, जो स्थिति में वो है उससे नीचे जाने के लिए उन्होंने तपस्या किया, दास 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 अनुदास बनने का प्रयास किया उन्होंने। और यहां पर तपस्या करके उद्धव जी तृण का पत्ता बन गए हैं। उसको पौराणिक भाषा में कहते हैं गुल्मलता। गुल्मलता मतलब एकदम ऐसे जो जमीन पर होता है उस पर आप पाए पैर दो, कुत्ता कुत्ता बिल्ली टट्टी पेशाब करेंगे, वो कभी विरोध नहीं करता इस चीज का। और उस पर बड़ी सहजता से गोपियां चलती हैं। तो कहते जब इनके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाएगी, तब सहजता से मेरे मन में इनके जैसा प्रेम जो है उसका एक अणुमात्र कर्ण जो है वो मेरे में प्रवेश कर सकता है। यानी कि नम्र बने, बहुत अति नम्र। प्रणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। पूरे गौड़ीय संप्रदाय का आधारीभूत ये मंत्र है, जितना नीचा बनोगे उतने भगवान तुम्हारे पास में आएंगे। तो भगवान का निकट का सानिध्य सर्वोच्च स्थिति को छोड़कर ये ब्रज में आए और तृण का पंथ अपने। तो ये स्थान है जहां पर उन्होंने तपस्या किया है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत उत्कट स्थान है। इस स्थान का भाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोई महान व्यक्ति ने अपने महान पद को छोड़कर एक तुच्छ पद प्राप्त करने के लिए तपस्या किया है। समझने वाली बात है हा? हम सब सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम धनवान है, सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे पोजिशन में है, बड़े पावरफुल स्थिति में है, बड़े कॉन्टेक्ट है हमारे, बड़े व्यक्ति हम लोग हैं, हमारे आगे पीछे दौड़ते हमारे बहुत अनुयायी हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं हमको, उससे बहुत हमारा गर्व होता है। लेकिन भगवान को इसमें से किसी भी चीज से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम केवल भगवान को नम्र बनकर, दास दास अनुदास बनकर, अपने आप को तृण का तृण से भी तुच्छ मानकर जब भजन करेंगे तो भगवान का ध्यान उसके लिए हमारी ओर आकर्षित होगा। और यहां पर उसी भाव को लेकर एक महान व्यक्ति सखा रस में जो उच्चतम स्थिति पर प्राप्त कर चुके हैं, अपने आप को भगवान के निकट सानिध्य प्राप्त कर चुके, भगवान का प्रेम, भगवान का सख्य प्राप्त कर चुके, ऐसे व्यक्ति ने यहां पर आकर तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया है। बार बार कहने वाली और सोचने वाली बात है। तो हमको यहां प्रार्थना करना चाहिए उद्धव जी से कि आप जैसा जो नम्र भाव है वो हमको प्राप्त हो, ताकि हम वैष्णवों की सेवा कर सके। अपने आप को सबसे हमको निचला मानना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि इसमें से मेरे से नीचे कितने लोग हैं, और कभी सोचते हैं कि इन ग्रुप की, इस ग्रुप के अंदर मेरे से एडवांस कौन है, दो चार ही है, चलो उनको भी लांग के आगे चला जाऊंगा, ऐसा हम सोचते हैं। स्कूल में कैसे सोचते हैं कि हमारे मार्क जितने हैं इसमें मेरे आगे कितने लोग हैं, चार पांच हैं, पचास हैं, बीस हैं, पच्चीस हैं, तो कोशिश करते हैं आगे आगे जाने की, सबको हमारे पीछे करने की बात सोचते हैं हम लोग, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने अहम को बढ़ाने के लिए, अपने क्या मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए। लेकिन भक्ति का ये तो क्या कहते हैं उसको, प्रेयस मार्ग है, इसमें हम भौतिक प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन श्रेयस मार्ग कौन सा है, जब हम अपने आप को नीचा और नीचा और नीचा और नीचा दिखाना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, बाकी सब लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सब लोगों को आगे करना चाहते हैं और सबसे पीछे हम रहना चाहते हैं। राधा रानी भी इस भाव में है, हम थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं तो राधा रानी तुरंत हमारे लिए भगवान को सिफारिश करती है, ये भक्त मेरे से भी अच्छा है, इसको आप स्वीकार करो, इसकी भावना को स्वीकार करो, तुरंत सिफारिश कर देती है। सबसे श्रेष्ठतम भक्त जो भगवान की है राधा रानी, वो भी इसी भाव में रहती है। देखो ठाकुर जी, देखो ये गोपी, गोपी जो है कितनी कितनी प्यारी है, कितना भजन है इसके अंदर, कितना भाव है आपके प्रति, इसकी भक्ति को स्वीकार करो, ये राधा रानी का कार्य है, इसकी उनकी भावना ये है। इसलिए हमको यहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए उद्धव जी से। और एक घटना यहाँ पर हुई है, उद्धव जी यहाँ पर गुलमलता बनकर रह चुके, यहीं पर रहे, गोपियों के चरणों की रस लेते रहे। जब भगवान अंतर्धान हुए तो भगवान ने संदेश दिया था कि मेरी पत्नियों को, जितनी पत्नियां थी भगवान के 16,108, सबको आदेश दिया, राजा परीक्षित को भी आदेश दिया, बज्रनाभ को भी आदेश दिया कि उनको सब ब्रज ले जाओ जब विरह में आएंगी, तो वो सब यहां पर आई हैं। और उनको कहा गया था कि आप संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी रानियों ने भगवान के यहाँ पर संकीर्तन किया है, नाम संकीर्तन, उद्धव जी को गुलवलता के रूप से प्रकट कराने के लिए। तो जब रानियों ने बहुत प्रेम नाम संकीर्तन किया तो रानियों के भक्ति भाव के प्रभाव से गुलवलता के रूप में जो उद्धव जी थे वो मतलब हमारे शरीर जैसे प्रकट हो गए गुलवलताओं से, और दर्शन दिया उन्होंने। तो आप भी अगर यहाँ पर नाम संकीर्तन करोगे तो आपके लिए भी उद्धव जी प्रकट हो सकते हैं। और प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, प्रकट होकर उन्होंने 30 दिन तक श्रीमद् भागवतम सुनाया कृष्ण भगवान की पत्नियों को। और श्रीमद् भागवतम जो है वो स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण भगवान ने अपनी लीला को अंतर्धान करने के पश्चात श्रीमद् भागवत का उदय हुआ क्षितिज पर इस विश्व के, और श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण का शरीर ही है, प्रथम और दूसरा स्कंद जो उनके चरण कमल है, उनका दशम स्कंद उनका मुख कमल है, इस तरह से श्रीमद् भागवत का वर्णन आता है। तो जो भगवान के विरह में थी उन्होंने श्रीमद् भागवत का पठन यानी कि कथन करके उनके विरह को मिटाया। यहां तक कि जब दशम स्कंद का वर्णन शुरू हुआ तो सभी रानियां अपने विरह को दुख को भूल गई और बहुत ही आनंद से आप्लावित हो गई, आनंद विभोर हो गई वो। और उसके आगे जब उन्हें वर्णन सुना तो उन्होंने कथा सुनते सुनते अपने दिव्य स्वरूप जो उनका गौलोक धाम में उनका दिव्य स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसको भी देखा उन्होंने। और श्रीमद् भागवत के अंत होते होते वो अपने निज धाम के स्वरूप में लीन हो गई, मतलब वो गौलोक धाम चली गई यहीं से, इतनी पवित्र जगह है ये। भगवान ने अपने रानियों को सबको गौलोक धाम वापस बुलाने का जो आयोजन है इस लीला के माध्यम से यहां पर किया। तो नाम संकीर्तन के लिए भी ये जगह महत्वपूर्ण है, नम्र बनने के लिए भी महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवत का महत्व समझने के लिए भी ये जगह महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत का भक्ति भाव से अध्ययन और पठन करने से हमारे हृदय के सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं और हमारा मूल जो भाव है हृदय का वो प्रकट हो जाता है। मूल भाव क्या है हमारा, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये हमारे जीवन का मूल स्वरूप है, हम क्या है, भगवान के दास हैं। श्रीमद् भागवत के नित्य सेवन से, भक्तों की सेवा करने से, भगवान के नाम का संकीर्तन एवं जप करके हम अपने मूल स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, यहां से वहां से, विद्यार्थी है, गृहस्थ है, सब अलग अलग हमारी पहचान है। ये सब हमारी मूल पहचान के ऊपर लगी हुई झूठी पहचाने हैं, नश्वर पहचाने हैं, समय के साथ नष्ट होने वाली पहचाने हैं। हाँ, अगर हम सोचते हैं हम जवान है, समय के साथ वो बूढ़े हो जाएंगे, फिर जवान नहीं बोल सकते, है ना। और आज हमारी स्मृति जगह पर है, बुढ़ापे पर अगर डिमेंशिया हो जाएगा सब हमारे ज्ञान सब भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा, नाम भी नहीं याद आएगा। ऐसे देखा हमने कई लोगों को, अपना नाम नहीं याद रखते और पति पत्नी बच्चे को पहचानते नहीं, सबसे निकट लोगों को पहचानते नहीं, तो जो पढ़ा है मेडिकल का इंजीनियरिंग का ज्ञान कैसे याद आएगा उनको। मतलब ये सब चीजें समय के साथ नष्ट होने वाली है, लेकिन समय के साथ में हमारी जो पहचान है वो नष्ट नहीं होती है। इसलिए हमारी जो असली पहचान है उसको हम अगर समझ जाते हैं तो वो समय के प्रभाव से नष्ट नहीं होती है। और वो श्रीमद् भागवत जो है इसका पठन भी यहाँ पर हुआ था उद्धव जी के श्रीमुख से। उद्धव जी ने मैत्रेय जी को उपदेश किया है, मैत्रेय जी ने वैदुर को उपदेश किया है। उद्धव जी बड़े महान विभूति है। जब भगवान उद्धव को मिलते थे तो ऐसे कहा कि भगवान को उद्धव जी की ओर बहुत विशेष स्नेह था, एक बार मैत्रेय जी को उद्धव जी को साथ में मिले, फिर भी उनका उस समय उद्धव जी की ओर बहुत ज्यादा झुकाव था, प्रेममय दृष्टि से उनको निहार रहे थे। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। तो ऐसे उद्धव जी यहां पर थोड़ा पीछे देखेंगे, जमुना गोवर्धन को पार करके ऐसे हम जाएंगे तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कुसुम सरोवर है, वहां पर उद्धव जी की बैठक भी है जहां पर उन्होंने बैठ के भजन किया है। ये कुंड के किनारे बैठकर उन्होंने भजन किया। तो ये उद्धव की जगह है, यहां से आगे कुसुम सरोवर एक लाइन में है सब, और इसके राइट साइड में घाटी है जहां से डायरेक्टली आप यहां से वहां जा सकते हैं। मैंने क्या कहा था, जहां से आप गोवर्धन के इस पार से उस पार हो सकते हैं उसको घाटी कहते हैं। सखियां यहां से आती थी और भगवान यहां से आते उनको रोकते थे घाटी में, उनकी मटकी फोड़ते थे। यहां से वो मथुरा में दूध दही मक्खन बेचने को जाती थी। जैसे ये पवित्र स्थली है, सब लोग प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, आचमन कीजिए, उद्धव जी को मन से, दिल से, हृदय से प्रार्थना कीजिए कि हमारा मन नाम संकीर्तन में रुचि ले, नाम के अंदर हमारा आसक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, रुचि प्राप्त हो, श्रीमद् भागवत के अध्ययन में हमारी रुचि हो, बाकी सब दुनिया की फालतू बातों में हमारी रुचि कम हो, और हम नम्र बनकर जैसे आपने तृण का पत्ता बनने का प्रयास किया, हमें भी ऐसे बनने की अभिलाषा है, क्योंकि ऐसे करने से हम जानते हैं कि भगवान की कृपा हम पर आएगी। जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव जी महाराज की जय।